लेकिन जैसे ही दादाजी ने ये कहा कि वे उसके डॉक्टर बनने में मदद करेंगे, आस्था को अच्छा लगा और उसने राहत की सांस ली। वो कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको लगता है कि आप मेरी मदद कर पाएंगे और आप मुझे वो काम दे रहे हैं दादाजी, जो करना मेरे लिए नामुमकिन है? जिस पोते को आप सुधार नहीं पाए और थोड़ा बहुत बदलाव आप भी उसमें नहीं ला पाए, भला उसे मैं ऐसे कैसे सुधार सकती हूँ? दादाजी हल्की मुस्कुराहट के साथ आस्था के करीब गए और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हम अच्छी तरह से जानते हैं बेटी कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और शायद जो कुछ तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपने पोते को ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, और वैसे भी उसने हमारी बीमारी के चलते शादी करने का वादा किया था। उसने वो वादा आज पूरा कर दिया है। शादी के बाद उसने साफ साफ कह दिया कि उसके बाद वो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, इसीलिए अब हम उसे और ज्यादा रोक टोक नहीं सकते, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद है कि तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। दादाजी के ये शब्द सुनकर आस्था फिर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर दादाजी कहना क्या चाहते हैं, वो कैसे सब कुछ ठीक कर सकती है। उसे तो जिंदगी की ज्यादा कुछ समझ भी नहीं थी, अभी भी उसमें काफी ज्यादा बचपन था। इस अचानक से हुई शादी से उसके सर पर मुश्किलें आन पड़ी थीं। ऐसे कैसे वो इस स्थिति को संभालेगी? दादाजी ने उसे कहा, बेटे अब हम कल आपसे बात करेंगे, हम चाहते हैं कि पहले आप अभी आराम करें, आप काफी ज्यादा थक गई होंगी। और हाँ, हमें पता चला कि आपके क्लोजेट में केवल साड़ियाँ वगैरह ही रखी हैं, तो शायद आप उनमें कंफर्टेबल फील ना करें, लेकिन हम जल्दी ही अपने डिजाइनर से कहकर आपके मुताबिक आपके लिए नए कपड़ों का इंतजाम करा देंगे। फिलहाल विदाई के वक्त आपकी नानी माँ और मामा जी ने आपके लिए कुछ कपड़े और आपका कुछ जरूरी सामान हमारे घर खिंचवा दिए थे, जो हमने इस कमरे में रखवा दिए हैं। अब आप देख लीजिए, जो कुछ आपको समझ में आए वैसे ही अपना सामान एडजस्ट कर लीजिए। दादाजी के कहने पर आस्था ने कुछ सुकून भरी सांस ली। दादाजी उसे आराम करने को कहकर खुद बाहर निकल गए। जाने से पहले उन्होंने कहा, बेटा तुम हमारी बातों के बारे में सोच विचार जरूर करना, अगर तुम्हें हमारा प्रपोजल पसंद आ जाता है तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, और जो कुछ तुम कहोगी हम सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे। ऐसा कहकर दादाजी उस कमरे से बाहर निकल गए। आस्था थोड़ी देर वहीं बैठी रही, फिर कुछ सोचकर उस कोने में रखे हुए एक थैला देखा, जो कि उसे जाना पहचाना सा लगा। आस्था ने जल्दी से थैला खोल लिया, उसमें बहुत सारे नए कपड़े थे। फ्लैशबैक। जब से आस्था ने अपने मामा की बेटी की शादी के बारे में सुना था, तब उसने अपनी नानी से जिद करके अपने लिए 3-4 नए कपड़े मंगवा लिए थे। आस्था को आज भी वो दिन याद है जब वो खुशी खुशी सारे नए कपड़े मनोरमा आंटी के पास लेकर गई थी। मनोरमा आंटी ने उसे चहकते हुए देखकर कहा था, ये सारे रंग तो तुम पर बहुत जंचेंगे, बड़े ही प्यारे कपड़े हैं। तब आस्था शर्मा गई थी। मनोरमा आंटी, जो कि सिलाई मशीन का काम किया करती थी, ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए आस्था के लिए बड़े ही प्यारे प्यारे फ्रॉक लेगिंग्स वगैरह सिल दिए थे। आस्था बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी उन सारे कपड़ों को देखकर। फ्लैशबैक एंड। आस्था की आंखें फिर भर आईं और वो रोने लगी। जल्दी ही आस्था बाथरूम में घुस गई थी। फ्रेश होने के बाद उसने अपनी नानी ने भेजे हुए कपड़े पहने। उसे अपने कपड़े पहनकर काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन आईने में देखते हुए आस्था का ध्यान अपने गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में लगे सिंदूर पर गया। आस्था का दिल चाहा कि वो अभी और इसी वक्त से मंगलसूत्र को निकालकर फेंक दें और सिंदूर को मिटा डालें, लेकिन ना जाने कौन से एहसास थे कि वो चाहकर भी उस मंगलसूत्र और सिंदूर को अपने सर से पोंछ नहीं पा रही थी। आस्था ज्यादा ना सोचते हुए गहरी नींद में सो गई। दूसरी ओर चारों मूछ वाले यानी कि चारों दोस्त अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठे हुए थे। आहान उन्हें चिल आउट करने के लिए कहने लगा, यार तुम लोगों को तो अरमान ब्रो की आदत के बारे में पता ही है, तो तुम लोगों को इस तरह से उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम सब तो शुक्र मनाओ कि उन्होंने भाभी के सर में गोली नहीं मारी, उन्होंने उनके बराबर में रखे हुए बॉस पर गोली मारी है। आकाश, जो कि पहले से ही चिढ़ा हुआ था, बोला, हम अच्छी तरह से जानते हैं यार, इसीलिए तो हम सब अरमान को समझाते हैं कि उसे जिंदगी में प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसे गुस्से से जिंदगी नहीं चलती है। तुम लोग बचपन से उसे जानते हो, तो क्या तुम लोगों को अभी तक उसकी आदत के बारे में पता नहीं चला? सुमित ने कहा, हम लोग यहाँ केवल 2-4 दिनों के लिए हैं, और वैसे भी तू तो अच्छी तरह से जानता है हमारे काम ऐसे हैं कि हमें एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। वो तो तूने जब अरमान भाई की शादी के बारे में बताया, तब हम खुद को रोक नहीं पाए और अपने काम से 15 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ अटपके, और अब शायद तू भूल रहा है हमारे वो 15 दिन भी अब पूरे होने वाले हैं। पहले हफ्ते तो हम सब ने शॉपिंग वगैरह में ही निकाल दिया, दूसरा हफ्ता हमारा पार्टी वगैरह और शादी में निकल गया, अब केवल 3 दिन बाकी हैं। 3 दिनों के बाद हम वापस अपने अपने मेंशन और फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाएंगे, और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुए हैं क्योंकि दादाजी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना तुझे और अरमान को करते हैं, समझा? उनके लिए हम सब उनके पोतों से कम नहीं हैं। अचानक दादाजी की आवाज वहां गूंजी, हो गया तुम लोगों का? जैसे ही दादाजी की आवाज सबने सुनी, सब शरीफ बच्चों की तरह वहां सर झुकाकर खड़े हो गए। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करने लगे। पता नहीं अब दादाजी कौन सी बात पर डांट लगाने वाले हैं। आस्था को आराम करने का कहने के बाद दादाजी सीधे उन चारों के पास आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अरमान ने उन चारों की भी अच्छी खासी बैंड बजाई है और उन्हें भी काफी हद तक खरी खोटी सुनाई है, इसीलिए सभी के सभी इस वक्त उदास होंगे। जैसे ही दादाजी वहां आए, उन्होंने उन सबकी ओर देखते हुए कहा, तुम सबको अच्छी तरह से पता है ना अपने उस खड्डूस भाई के बारे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम चारों को बहू की मदद करनी होगी, ताकि वो और अरमान एक हो सकें, ताकि वे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर सकें। दादाजी के शब्द सुनकर उन चारों का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। ध्रुव आगे आया और कहने लगा, दादाजी आप चाहे मुझे दुनिया का कितना ही ज्यादा संजीदा केस क्यों ना दे दें, या चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मैं उसका इलाज कर दूंगा, लेकिन आप जो ये काम मुझसे कह रहे हैं, ये मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। सुमित ने भी हाथ खड़े कर लिए और बोला, दादाजी भले ही मैं कितने ही लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ, लेकिन आप अपने पोते को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उसे हमारे बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो वो हमारा क्या हाल करेगा, ये सोचकर ही मुझे पसीने आ रहे हैं। आकाश ने कहा, दादाजी आप तो जानते हैं कि मेरे होटल में हर रोज हजारों लोग खाना खाते आते हैं और एक से बढ़कर एक वीआईपी आते हैं। मैं उन सबको अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ, सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पोते के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही उन चारों ने अपने अलग अलग बहाने देकर हाथ खड़े कर दिए, दादाजी गुस्से से उन सबको घूरते हुए कहने लगे,
नालायको, मुझे तुम लोगों से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। कहने को तो तुम सब अरमान के दोस्त हो, तो क्यों तुम सब इस तरह से उससे डरते हो? हाँ, क्या तुम सबको अपने दोस्त की फिक्र नहीं है? हमने तुम लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं किया है, हमने तुम सबको सिर्फ हुक्म दिया है कि तुम लोगों को हमारी बात माननी ही होगी। और हाँ, अब तुम चारों को कल से बहू की हर काम में मदद करनी होगी, और इस घर में उसका मन लगा रहे इस बात का ज्यादा ख्याल रखना होगा, उसे अच्छी तरह से बेहतर फील करवाना होगा। याद रखना, अगर मेरी बहू की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम चारों की खाटियां खड़ी कर दूंगा। ऐसा कहकर दादोजी वहां से निकल गए। अब तो वे चारों बेबसी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ध्रुव कहने लगा, यार ये क्या बात हुई, बीवी अरमान भाई की है और खुश हम सब रखें, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। और वैसे भी अगर हम सब भाभी का ज्यादा ख्याल रखेंगे तो अरमान भाई को गुस्सा आ गया तो, और अपने गुस्से में उसने हमें उठाकर घर से बाहर फेंक दिया तो हम सब तो बेघर हो जाएंगे ना यार। ऐसा कहकर चारों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। आहान ने कहा, भाई सुबह होने में केवल 2 घंटे बाकी हैं, मुझे लग रहा है कि हमें फटाफट से जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, वरना दादाजी हमें सुबह सुबह जल्दी उठा देंगे और उसके बाद उनके रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने होंगे, वरना आप सबको तो पता है ना, दादाजी को देर से उठने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आहान की बात याद दिलाते ही सुमित जल्दी से अपने मुंह पर उबासी लेते हुए कहने लगा, अरे यार ये तो मैं भूल ही गया, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, और वैसे भी अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मुझसे सुबह बिल्कुल नहीं उठ जाएगा और दादाजी की इस बार की कोई भी पनिशमेंट मैं नहीं झेल पाऊंगा। असल में जब भी कोई देर से उठता था तो दादाजी उन्हें खास तरह की पनिशमेंट देते थे, या तो उसे पूरे दिन घर घर का खाना बनाने की जिम्मेदारी देते थे, या पूरा दिन साफ सफाई की जिम्मेदारी उसकी होती थी। दादाजी सबको ऐसे काम देते थे जिसकी वजह से कोई भी अगली बार देरी से जगने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। चारों जल्दी उल्टा सीधा दौड़ते भागते कमरे में पहुंच चुके थे। वे चारों खासकर एक ही कमरे में रहा करते थे, अरमान उनसे हमेशा अलग रहा करता था। चारों एक ही जगह अलग अलग बेड लगाकर सोया करते थे और खूब देर तक मौज मस्ती करते हुए सोया करते थे। उन चारों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वे चारों अपने ही फील्ड के सबसे ज्यादा कामयाब नौजवान थे। जल्दी ही वे लोग भी एक दूसरे से घुनघरते हुए गहरी नींद में सो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था के अपने कमरे से जाने के बाद अपने बेड पर लेट चुका था। थोड़ी देर से आस्था ऑलरेडी बेड पर लेटी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी खुशबू पूरी तरह से उस कमरे में महक रही थी। अरमान अब इस खुशबू से इरिटेट हो गया। जल्दी ही उसने बेडशीट उठाकर नीचे फेंक दी और जल्दी से नौकर को अपने कमरे की बेडशीट चेंज करने के लिए कहा। अरमान के घर पर 24 घंटे दिन और रात नौकर अवेलेबल रहते थे, लेकिन कोई फीमेल स्टाफ नहीं था, सारे कुल मिलाकर मेल स्टाफ ही हुआ करते थे, क्योंकि अरमान को फीमेल यानी कि लेडीज से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। एक यही वजह थी कि वो कभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस दिन दादाजी ने अपनी सीरियस बीमारी के बारे में बताया और साथ ही साथ अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में अरमान से कहा, तो उस वक्त चाहकर भी अरमान मना नहीं कर पाया। लेकिन अब अरमान फिर इरिटेट हो चुका था, क्योंकि आस्था से शादी करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे खुद कुछ नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। जल्दी ही उसके कमरे की बेडशीट चेंज कर दी गई, उसे थोड़ा सा बेहतर फील हुआ और जल्दी ही वो गहरी नींद में सो चुका था।